ఓం శాంతి. ఆజ్ సవేరే భీ మోర్నింగ్ మే బాబా నే ఇస్ సంగం యొక్క మహత్వ సునాయా. ఈ సమయ బహుత్ మూల్యవాన్ హై. అభి బాకి థోడా సమయ రహా. బాబా కవి సే కహతే హైన్ ఎవర్ రెడీ, అచానక్ జో హోనే వాలా హై వో హోంగా. శురూ సే బాబా నే హమే లాస్ట్ పేపర్ బతా దియా హై, నష్టో మోహా స్మృతి లబ్ధా. ఏక్ సెకండ్ మే आपको अंत में एक बाबा की याद रहे. कोई भी तरफ बुद्धि ना जाए, ना देह के तरफ, ना देह के संबंधियों के तरफ, ना अपने वैभव के तरफ जाए. साधारण लोग, अज्ञानी लोग क्या करेंगे? अंत के समय बोलेंगे, मेरे बेटे को बुलाओ, बहू को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, पोतों को बुलाओ, दोहितों को बुलाओ, और फिर अपनी प्रॉपर्टी बांट देंगे. मामा कहते हैं नष्टो मोहा बनो. वैसे तो कहते हैं सब कुछ बाबा को अर्पण करो, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा बच्चा है तो उसमें मोह जाएगा, मेरा पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, मेरा समझने से मोह जाएगा, उनके ऊपर हम आधारित रहेंगे. इसलिए उन सब से मोह तोड़ना है, एक से जोड़ना है, और उसके लिए हमें पढ़ना है और पढ़ाना है. यही हमारा धंधा है, पढ़ो पढ़ाओ, पावन बनो, औरों को पावन बनाओ. तो जब शिव बाबा से हम सर्व संबंध बांधेंगे तो और संबंध से मोह टूट जाएंगे, उनका आधार हम नहीं लेंगे. और बाबा ने हमें एडप्ट किया, पढ़ाते हैं, अपना परिचय देते हैं, कहते हैं फादर शो सन, सन शो फादर. बाबा ने अपना परिचय हमें दिया है. हमारा कर्तव्य है बाप का परिचय सबको देना. क्या है कि आजकल हमारा ड्रेस देखकर या बैज देखकर कहेंगे ये ओम शांति वाले हैं. एयरपोर्ट का स्टाफ भी जान लेता है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमार यहाँ आए हैं, ओम शांति कहते हैं. पर ओम शांति क्यों कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, नहीं समझते हैं। और जो शिव के भगत है वो भी शिव बाबा को नहीं जानते, पूजा करते हैं, रात्रि रात्रि जागकर शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं पर जानते नहीं। तो इसलिए सबको परिचय देना है। और परिचय देने के लिए हम लोगों ने कितना प्रयत्न किया, कॉन्फ्रेंसेस की, मेले किए, मेगा प्रोग्राम किए और कई उत्साही भाई बहने तो अपना कुर्ते पर शिव बाबा का पिक्चर भी पहन के घूमते हैं और कुछ संदेश देते हैं। तो परिचय तो देना है पर अंत में क्या है, हमारा चलन, चेहरा और वाइब्रेशन और हमारी स्थिति सेवा करेंगी। इसलिए लक्ष्य रखना है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। और इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। आज मुरली में भी कहा, वृत्ति द्वारा वायु मंडल को पावरफुल बनाना। रोज करते रहते हैं, उड़ती कला में रहो, उड़ते रहो, थकना नहीं, रुकना नहीं, विघ्न आएंगे, पहाड़ जैसी भी समस्या है, पर जो उड़ने वाले हैं ना ऊपर से क्रॉस करके चले जाएंगे। तो क्या तीव्र पुरुषार्थ करना है उसके लिए सोचेंगे। सबसे पहला लेसन हमें पक्का करना है, आत्मिक ध्यान में रहना है। और अपने संकल्पों पर पूरा टेंशन देना है, शुद्ध संकल्प चले, व्यर्थ विकारी संकल्प ना चले। और उसके लिए फुल स्टॉप पावरफुल हो। हमारी स्थिति ऊंची और एक रस रहे, परिस्थितियां ये परिस्थिति से हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, अंगत समान अचल अडोल रहना हो। और पुरुषार्थ में कभी संशय ना आए, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, नहीं, निश्चय हो विजय हमारी है, कार्य हो ही जाएगा, बाप को प्रत्यक्ष करके ही छोड़ेंगे। हिम्मत रखनी है तो बाबा की मदद जरूर मिलती रहेंगे। स्वस्थिति में मेरापन ना हो, तेरा 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 सब कुछ तेरा, बाल बच्चे तेरे, जिम्मेवारी तेरी बाबा, तो निमित्त बनेंगे, निर्माण रहेंगे और हल्के रहेंगे तो उड़ते रहेंगे। अपनी उपराम स्थिति रखनी है, ड्रामा को साक्षी बनकर देखते रहना है ताकि हम उपराम रहें। क्वेश्चन ना हो, व्यर्थ संकल्प ना हो, बहानेबाजी ना हो, सुस्ती ना हो, अलबेलापन ना हो, सूक्ष्म विकार भी ना हो, जो करना है नाउ, नाउ या नेवर का मंत्र पक्का हो। माता सामने बैठकर जरा अलर्ट होके बैठो, पीछे टेक कर बैठेंगे तो नींद जरूर आ जाएंगे। जो भी अपनी कमजोरी है अभी अभी खत्म कर देनी है, कारण नहीं देना है। कई बार क्या होता है, गुस्से होते हैं फिर कहेंगे क्या करें, इसको कितनी बारी कहा ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, फिर भी करता रहता है तो गुस्सा नहीं आएगा। कारण ना दो, निवारण सोचो। पेपर तो आने ही है, स्टूडेंट्स है, आगे बढ़ने के लिए जैसे स्कूल में नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एग्जाम पास करनी है, तो हमें तो बड़ी एग्जाम पास करनी है, मनुष्य से देवता बनना, नरक से स्वर्ग में जाना है, तो पेपर आएंगे। परंतु ये भी हमें निश्चय होना चाहिए हम विजयी रत्न है। सदा दाता हम, लेवता नहीं, औरों से लेने की अपेक्षा नहीं रखो। ऐसे नहीं करे कहे कि वो हमको प्यार देगा हम देंगे, वो हमको रिस्पेक्ट देंगे हम देंगे, नहीं, मुझे करके दिखाना है। मास्टर सर्वा शक्तिवान बनना है ताकि औरों को भी हमारे शक्ति और गुणों की खुशबू पहुंचे। और आज भी कहा स्मृति से स्थिति बनेंगे, जैसे स्मृति रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो स्थिति भी ऐसी बन जाएंगे। मम्मा नंबर वन कैसे बने? एक बार गलती की दोबारा न हो। याद की लगन ऐसी हो जो मगन रहे। कथन से ज्यादा मनन मंथन करना है। हमारी चाल अलौकिक रहे और जितने लगन में मगन हो जाएंगे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। बाप दादा से अति स्नेह। एक बाप दूसरा न कोई। मेरा संसार बाबा। व्यर्थ संकल्पों का जितना हम फास्ट रखेंगे फास्ट जाएंगे और फर्स्ट आएंगे। तीन बिंदु पक्का, आत्मा परमात्मा और फुल स्टॉप। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, चार्ट देखना है और जो भी कमी हो उसको फौरन दूर करना है। और ऑनेस्टली चेक करना है, अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट चेक करना है। और याद द्वारा शक्ति संपन्न बनना है। सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ। सोचा और किया। चंद्रमा शीतल है तो चंद्रवंशियों की निशानी है पुरुषार्थ भी ठंडा शीतल। उड़ती कला में रहने के लिए हल्का रहना हो, कोई बोझा ना हो, शरीर का भान भी ना हो, ये भी एक बोझा है। और निमित्त समझकर बाबा की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूं। उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो उड़ने के लिए। कोई भी मुंह का बंधन नीचे ना खींचे। श्रीमत पर पक्का रहना हो। गृहस्थ में रहते युगल भी ज्ञान में है, तो एक मत हो, सरेंडर हो। बाप समान बनना है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बाप। एक बाप, दूसरा न कोई। समय की वैल्यू जान, व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय को बचाना है। माया के साथ समय नहीं लगाएंगे, दूर से परख लेंगे ताकि माया के साथ लड़ना ना पड़े। और योग में बैठेंगे, नियम अनुसार ही नहीं परंतु ज्वालामुखी योग हो और सबको सकाश दो। स्पेशली शाम के समय, जैसे वर्ल्ड मेडिटेशन आवर में हम शांति का प्रभाव सारे विश्व को देते हैं ना, तो सवेरे अमृत वेला अपने लिए योग लगाओ, अपनी अवस्था ऊंची बनाओ, पर शाम को औरों को सकाश। ओम शांति। तो ज्वालामुखी योग द्वारा अपना विकर्म विनाश करना है, सकाश देनी है। दुआएं लेंगे और लेंगे, जितने जितने सेवा करेंगे तो वहीं मिलेंगे। चलते चलते फरिश्तापन का अनुभव बढ़ाओ, अशरीरीपन की स्थिति रहे और सेकंड में संकल्पों को समाप्त करो। प्लान बनाओ पर संकल्प वाणी कर्म तीनों एक समान हो। ऐसे नहीं हम बड़े बड़े प्लान बनाए, बड़ी बड़ी बात करें और करने समय कहेंगे क्या करें, सहयोग नहीं मिलता है, ये नहीं है वो नहीं। कई है जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, क्या कहते हैं, सारा साल घूमो फिरो, खाओ पियो, खेलो, लास्ट में दो मास पढ़ाई करके पास हो जाएंगे। ऐसे कई कहते हैं, बिना चाहेंगे तो देखेंगे। और तीव्र पुरुषार्थी विनाश की डेट को नहीं सोचेंगे। विनाश को जल्दी लाने के लिए अपना पुरुषार्थ बनाएंगे और एवर रेडी रहेंगे। और आजकल बाबा तो इस बात का बहुत याद दिलाते हैं, सुख दो सुख लो, दुख न दो न लो। तो अपने संकल्प बोल कर्म पर ध्यान रहे। ऐसे नहीं कि मेरा कोई भाव नहीं था आपको दुख देने का, पर हो गया। ऐसे बोलने की मुझे आदत है। सदैव होश में रहेंगे, माया से बेहोश नहीं होंगे और माया जीत रहेंगे। स्टूडेंट है, बाबा ने हमें लक्ष्य दे दिया है कि लक्ष्मी नारायण बनना है, तो सदैव एम सामने रखे और बाबा की आज्ञा पर चले। सदैव बाबा का संदेश देते रहे और स्वदेश सामने रखे। संकल्प भी बाप समा, त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाओ तो कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा और पछताना नहीं पड़ेगा। वो लाइट माइट और डिवाइन इंसाइट वाले होंगे, अर्थात तीसरा नेत्र सदैव खुला रहेगा। कोई कितना भी विघ्न रूप बने वो सुखचिंतक रहेंगे। अपकारी पर भी उपकार करेंगे और सदैव होली हंस बन कर रहेंगे। अपनी हर कर्मेंद्रियों को जैसे और जहां लगाना चाहे वहां हम लगा सके, ऐसी स्थिति बनानी है। और इसको ही एवर रेडी कहेंगे, ऐसे नहीं मालूम है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। पर टीवी चलता है, हमारी नजर चली जाती है। मालूम है हमारी हेल्थ को कौन सा खाना सूट होता है। डायबिटीज है, मालूम है कि मीठा नहीं खाना है, पर कहेंगे चलो अभी तो मीठा खा ले, पीछे गोली ज्यादा ले लेंगे या इंजेक्शन का यूनिट ज्यादा ले लेंगे, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, खाना पीना बोलना। अपनी फाइनल स्थिति की डेट फिक्स करो, कब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। सिंपल सैंपल और सपूत बन सबूत देंगे। आराम पसंद नहीं, अलबेलापन नहीं, अलर्ट और एक्यूरेट रहेंगे। संकल्प वचन कर्म और स्वप्न में भी पूर्ण पवित्रता। यदि विकारी स्वप्न आते हैं उसका मतलब अभी तक बुद्धि में ऐसे ख्याल आता है। तो क्या होता है, जब हम जागृत होते हैं तो कंट्रोल कर लेते हैं, पर स्वप्न में वो सोच चलता। आगे बढ़ने में ज्ञान में दृढ़ता चाहिए और हिम्मत चाहिए। क्योंकि शुरू से विघ्न पड़ेंगे, पहले तो घर वाले सामना करेंगे, कहेंगे ये क्या नई बात, ये खाना नहीं वो खाना नहीं, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। पवित्र रहना है, शादी की क्योंकि, तो घर वाले शुरू से सामना करेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेवा में भी एक मत नहीं होंगी तो सामना करना पड़ेगा। और अंत में अपने पुराने संस्कारों का सामना करना पड़ेगा, जो छिपे हुए संस्कार है ना, या जिसको जीता नहीं है, विकार का अंश भी है, वो अंत में आ जाएगा सामने। इसलिए हिम्मत रखनी है, हिम्मत हारने नहीं है। तो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे नेचुरली जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और बाप समा संपूर्ण बनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। दीदी जी कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है कि आप अमृत वेले योग में कौन सा अभ्यास करते हैं? आप अमृत वेले योग में कौन सा अभ्यास करते हैं? हमें भी अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है?
अमृत वेले पावरफुल योग लगाने के लिए सारा दिन योग में रहना, रात को सोते समय बाप की याद में सोना है, और टाइम पर सोना। तो टाइम पर उठेंगे और जुट के नहीं खाएंगे। यदि नींद आती है या जुट के खाते हैं तो वहीं बैठे नहीं रहो, क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं, एक ही स्थान पर बैठेंगे, एक ही म्यूजिक चलाएंगे, उनको एक प्रकार की ही लाइट चाहिए, नहीं तो कहते हैं हमारा योग ठीक नहीं लगता है। तो ऐसा डिपेंडेंट नहीं बनना है, जहां भी है जो भी परिस्थिति है, तो जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, खान पान की शुद्धि, जल्दी शाम को खा लेना, वैसे डॉक्टर्स तो कहते हैं सूर्यास्त पहले खा लो 6:30 बजे पर, हमारा भोजन ही 7:30 तैयार होता है। तो यदि घर में रहते हैं या सेंटर पर यदि जल्दी भोजन खा लो, तो रात भर हमारा खाने का मशीन चलता नहीं, तो सवेरे फ्रेश रहेंगे। देरी से खाने से, भारी खाना खाने से क्या होगा, रात को मशीन चलती रहेंगी तो सवेरे फ्रेश नहीं रहेंगे। और सवेरे फ्रेश होने के लिए उठकर स्नान करो या कम से कम मुंह धुलाई करो, चाय पियो, कुछ मुरली पढ़ो, मंथन करो, तो योग में लक्ष्य तो हो, जितने पुराने हो, ज्वालामुखी या बिंदी बनकर बिंदी को याद करो, परंतु शून्य अवस्था में नहीं जाना है। कभी कभी मनन मंथन भी करो, क्योंकि बिंदी अवस्था या बीज रूप अवस्था हमेशा तो नहीं रह सकती है, इसलिए बीच बीच में मंथन करो, बाबा से रो रहान करो आदि आदि। तो ऐसे अपने पर अटेंशन जरूर रखना है, अपने को आराम चेयर में ऐसे करके नहीं क्लास में बैठना है, न योग में बैठना है, क्योंकि जितना आराम करेंगे ना, माया नींद में ले जाएंगे, इसलिए अलर्ट होकर बैठना है।
दीदी जी, इसी संबंधित दूसरा प्रश्न था कि योग में निद्रा क्या महत्व है, यदि नींद आती योग में तो क्या वो सही है, यदि नहीं है तो उसका समाधान क्या है।
ये तो बता दिया
जी, जी दीदी, ये तो क्लियर हो गया है। इससे संबंधित एक और प्रश्न था दीदी जी कि जब वो योग करने बैठते हैं तो बाबा कमरे में जाकर योग करते हैं, 10-15 मिनट तो बाबा से रू रिहान करते हैं, योग लगता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे शरीर आंखें बंद होने लगती है, शरीर पीछे की ओर झुकने लगता है और मुंह खुल जाता है, गला बंद हो जाता है, तो उसके लिए समाधान के लिए क्या करें?
जैसे भी आंख बंद होती है ना, आंख खोलो। कई लोग तो क्या करते हैं, यदि नींद आती है खड़े खड़े योग करते हैं। हमारे पास एक भाई था, पापा के रूम में भी पीछे जाकर खड़े होके योग करता था। चलते फिरते योग करो, क्योंकि नींद का काम है आना, हमारा काम है भगाना, ये समझना, अपने को कहना है मैं नींद को जीतने वाला, निंद्रा जीत, माया जीत, सर्वशक्तिमान। जैसे बताए ना, जैसी स्मृति होंगी ऐसी समर्थि आएंगी, डर डर के बैठेंगे नींद आएंगी, नींद आती है तो कई बार हम आह्वान करते हैं, कई बार नहीं नहीं आना ही नहीं आनी है हमारे सामने। जैसे वो गीत है ना, ये न कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो नींद को भी कहो मेरा खुदा प्यारा है। और अलबेला लक्ष्य नहीं आने देना है,
स्ट्रॉन्गली और पावरफुल स्ट्रॉन्ग होकर के, पावरफुल संकल्प के साथ, मजबूत होकर के, दृढ़ संकल्प के साथ बैठना है। दीदी जी एक प्रश्न है कि ब्राह्मण जीवन में मर्यादा का उल्लंघन होने से जो पाप चढ़ता है उसको कैसे मिटाए, और पाप नाश हो गया है उसका पता कैसे चलेगा?
मर्यादा का उल्लंघन करने से पाप जरूर होगा, और पाप विनाश के लिए बाबा रोज कहते हैं ज्वालामुखी या बीज रूप याद में रहो। मनन मंथन करने से या रू रहान करने से पाप विनाश नहीं होंगे, तो इसलिए हमें बीज रूप स्थिति में बैठना है, अलर्ट होकर बैठना है।
दीदी जी प्रश्न है कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को कैसे हम अप्लाई करें जीवन में?
याद दिलाओ मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, ये कर्मेंद्रिया मेरी वजीर है, नौकर है, उसको कंट्रोल में करना है, उसके ऊपर हमें राज्य करना है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो अपनी ये स्वराज्य अधिकारी सीट पर सेट रहना, नीचे नहीं उतरना। जैसे राजा जब तक सीट पर बैठा होता है ना, तो सब उसको आज्ञा को मानेंगे। राजा सीट से उतर गया, गद्दी से उतर गया, तो कौन उसका फरमान मानेगा? ऐसे हमें भी अपने को राज्य अधिकारी सीट पर सदा सेट रखना है।
दीदी जी प्रश्न है कि तीर पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हम अभी लास्ट में आए हैं, हमें फास्ट जाना है, तो उसके लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है?
क्लास उसके ऊपर करना है
जी।
तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर तो सारा क्लास कर रहा
हूँ। दीदी जी, ये प्रश्न है, जैसे पहले बाबा साकार में मिलते थे, उसके बाद अव्यक्त में मिले, तो जो पुराने भाई बहने हैं वो तो बाबा से मिले हैं, लेकिन जो नए आते हैं तो उनको कैसे समझाए वो बाबा से कैसे मिलेंगे, क्योंकि अभी नीचे जो प्रोग्राम चलता है मुरलियों का, जो रिवाइज कोर्स की जो मुरलियां दिखाते हैं, तो उनमें हम उसको कैसे समझा के लाए, तो कैसे उसको अनुभव कराए जो नए नए बच्चे आ रहे हैं।
ठीक है, आप में से कितने नए हैं जरा बताओ, जिसने अव्यक्त पावदा से अव्यक्त मुलाकात नहीं किया है, जरा हाथ उठाना। ठीक है, कल आपको अनुभव होगा, कल इसका अनुभव होना है। दूसरा, जितना आप उनको अव्यक्त बनने के या अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करने को कहेंगे, तो आपको वो अव्यक्त बाप दादा का या उनको अव्यक्त बाप दादा का अनुभव होगा, क्योंकि हमने कईयों का ऐसा अनुभव सुना है जब वो नीचे डायमंड हॉल में बैठते हैं तो अच्छी रीत से अव्यक्त स्थिति में बैठकर बाबा से दृष्टि लेते हैं और फील करते हैं जैसे बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाबा ने 2011 में मुरली चलाई थी, मैं तो अभी 2022 में हूँ, नहीं, ये फील करो कि अब बाप दादा हमारे सामने आए हैं और मुरली चला रहे हैं, तो जैसी स्मृति होंगी ना वैसी प्राप्ति होगी।
मेरी प्रश्न है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब दूसरे शरीर में जाती है, माँ के गर्भ में जाती है, तो किस तरह से अपने वो माता के गर्भ को चुनती है, वहां पर किस तरह से पहुंचती है, सूक्ष्म शरीर में भी क्या ज्ञान रहता है आत्मा को?
सूक्ष्म शरीर में आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं रहता है, जब तक स्थूल शरीर में ना आए। गर्भ में सिर्फ उनको जो पोषण मिलता है अम्बिली कोड से, माँ की प्लेसेंटा से और बच्चों की अम्बिली कोड में कनेक्शन होता है, तो माँ का जो खून है वो बच्चे में आता है और वो उसकी पालना करता है, जिससे वो गर्भ में एक छोटा बिंदु होके फिर जब जन्म लेता है, करीब 18 इंच का जन्म लेता है बच्चा, तो उसकी पालना वहां होती है, वहां सिर्फ बस उनका खाना पीना और अंदर घूमना होता है।
तो दीदी, वो प्रश्न उसमें ये भी है दीदी जी कि उसको अपने माँ बाप का जो चुनाव है वो कैसे करती है, कैसे पता चलता है कि कौन से गर्भ में जाना है?
कौन सा?
उसके माता पिता का चुनाव वो कैसे करती है, उसको कैसे पता चलता है कि कौन से गर्भ में जाना है, कहाँ जाना है?
ये सारा ऑटोमेटिक होता है, जिसके साथ जिसका हिसाब किताब होता है वो वहां पहुंच जाता है। कर्मों का हिसाब किताब जहां लेना देना बाकी है वहां ऑटोमेटिक वो पहुंच जाता।
दीदी जी, प्रश्न है एक भाई का कि वो मुरली के टाइम पर उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो मुरली बाद में सुन लेता है, तो क्या ये सही है? नहीं है तो इसको हम कैसे उसको समाधान निकाले?
क्यों एक्सरसाइज करनी पड़ती है?
कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होगी उनको?
कौन फोर्स करता है? खुद ही तो प्लान बनाते हैं ना, जिम में जाने का या एक्सरसाइज करने का, कोई फोर्स नहीं करता है। तो इसलिए अपना ऐसा प्लान बनाओ, मुरली के पहले या मुरली के बाद एक्सरसाइज में जाओ।
दीदी जी, प्रश्न है कि जो अभी आजादी का स्वर्णिम महोत्सव चल रहा है, तो भाई इसमें 75 जेलों में कैदियों की सेवाएं करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना है, कैसे करना है?
अकेला तो नहीं कर सकेंगे, सेंटर वाले प्लान करते हैं और मेजोरिटी सेंटर में कमेटी होती है, बैठकर प्लान बनाती है, उसमें बैठकर यदि अपना कोई सुझाव हो तो दे, नहीं तो जो लोग प्लान बनाते हैं उसमें सहयोगी बने। क्योंकि मैं जानती हूँ सब सेंटरों ने कुछ न कुछ प्लान बनाया है।
यदि विंग के थ्रू करना है तो विंग वालों से बैठ, यदि विंग्स के थ्रू करना है तो विंग्स वालों से बैठ के बात करें।
हाँ, विंग्स है, सेंटर है, जो भी है प्लान बनाते हैं। अकेला हम कुछ नहीं कर सकते।
जी, प्रश्न है कि एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या एवर रेडी माने शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी रहना है?
केवल
एवर रेडी का मतलब क्या है? जी दीदी जी, तो क्या शरीर छोड़ने के लिए हमको एवर रेडी रहना है, इसका ये मतलब है?
सिर्फ मन से एवर रेडी नहीं है, संस्कार से, क्योंकि दुखी लोग भी कहते हैं हम मर जाएं तो अच्छा। तो सुसाइड भी कर लेते हैं, आपका भी कर लेते हैं, तो इसलिए एवर रेडी माना नष्टो मोह और बस एक के लव में लीन रहे और अपनी जो संपूर्ण अवस्था है उद्देश्य सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, उस स्टेज को पाना है। क्योंकि ऐसे नहीं कि खुशी खुशी से मौत आ गया हम तैयार हैं, नहीं, जो लक्ष्य है वो पूरा करे, नहीं तो रेडी नहीं है।
दीदी जी, प्रश्न है कि मुझे डर बहुत लगता है, डर बहुत लगता है, हर सेकंड घबराहट रहती है, किसी से बात भी नहीं कर पाती है, तो डर से मुक्त होने के लिए क्या करना है?
डर उसको लगता है, जो अपने को बाबा की छत्र छाया में नहीं रखता हूं, जो बाबा की छत्र छाया में है, बाबा जिसका रक्षणहार है, किससे डरेगा? चोर से डरेगा? मौत से डरेगा? बाबा आज जी कहते थे, आप तो जीते जी मर गए हो, मौत से क्यों डरना है? डर लगता है कोई लूट ना ले, कोई हमें शारीरिक इजा ना करे, हम गिर न जाए। तो जिसका किसी में मोह होता है तो डरते हैं वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे। सबसे ज्यादा डर होता है मौत का। आत्मा अमर है, मरने वाले है नहीं। तो ज्ञान योग को यूज करो और बाबा के अपना साथी बना लो, बाबा की छत्र छाया में रहो और अपने आप को शिव शक्ति समझो। शिव शक्तियों ने शेर पर सवारी की है, अर्थात शेर से भी नहीं डरते हैं। काली ने कितने असुरों को मारा, हमारी यादगार है, तो डरना क्यों? जो झूठ पाप चोरी करते हैं ना, वो डरते हैं कि पकड़ा जाएगा। जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, समझते हैं पता नहीं इनकम टैक्स वाले रेड करेंगे। तो जो झूठे हैं वो डरते हैं। हम सच बाबा के सच्चे बच्चे हैं, हम क्यों डरेंगे?
जी, एक और प्रश्न है, जब योग में बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भागता है, मुझे उसे एकाग्र करने के लिए क्या अभ्यास करना है, उसे मैं कैसे एकाग्र करूँ?
यदि बाबा को जान लिया, बाबा की याद से क्या प्राप्ति होती है वो बुद्धि में आ गया, बाबा से प्यार हो गया, तो मन क्यों भागेगा? दुनियावी आकर्षण है तो मन भागेगा, ये खाना है, ये पीना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, पैसा कैसे कमाना है, वैराग्य लाओ दुनिया से। ये पुरानी दुनिया में है क्या? सत्योगी दुनिया सामने रखो, कल हमारे पास क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। इस पुरानी दुनिया से क्या अपेक्षा करनी है? तो जब ये लक्ष्य पक्का होगा ना, तो मन एकाग्र रहेगा। तो इसलिए बाबा ने फुल स्टॉप पावरफुल बनाने के लिए कहा, क्योंकि जैसे अभी तक हमारा मन है ना, ऐसी कार थी, एक्सीलेटर फास्ट, ब्रेक पावरफुल नहीं। अभी ब्रेक को पावरफुल बनाना है। तो मन को ब्रेक लगाओ तो एकाग्र हो जाएगा।
दीदी जी पहला प्रश्न है, दीदी जी लास्ट प्रश्न है कि बाबा से प्यार को कैसे बढ़ाए।
देखो सोचो बाबा हमें क्या देता है, हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही हथेली में लाया है। वो छोटा बच्चा है, यदि माँ बाप या पड़ोसी भी है ना, यदि उसके लिए रोज कुछ न कुछ लाता है तो क्या करेगा, इंतजार करेगा, अंकल अंकल आज मेरे लिए क्या लाए हो, अंकल बना दिया और रोज लेने के लिए इंतजार करता है। तो बाबा भी इतना देता है, हम जो है जैसे है ऐसा हमको बाबा ने स्वीकार कर लिया, और हमने जो गलती भी किया है कभी कभी भगवान को दोष दिया, जाने अनजाने गाली दी, कुत्ते में है बिल्ली में है, मगरमच्छ उतार लेते हैं मच्छर उतार लेते आदि आदि, फिर भी जब हम दुखी है या शांत है बाबा आता है, हमें सुखी शांत बनाने, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं हम प्यार करेंगे। तो प्राप्ति देखो बाबू से क्या क्या होती है, प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा।
जी दीदी जी, तो प्राप्ति और संबंध दोनों याद रहे। तो आज दीदी जी ने हमको समय की क्या पुकार है, तो वर्तमान समय हमको क्या क्या करना है वो भी स्पष्ट रीति से बताया, फास्ट पुरुषार्थ का तरीका बताया, अमृत वेले कैसे योग अभ्यास करना वो सब बताया। तो दीदी जी का हम बहुत बहुत दिल से करतल धवनी से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दीदी जी, थैंक यू दीदी जी।